शांति। मीठे बाबा की इस तपस्या स्थली में तपस्या करने का चांस और साथ साथ सेवा से भाग्य बनाने का चांस, कितना गोल्डन चांस हम सबको मिलता है। यहाँ तो योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। बाबा ने जिस स्थान पर खुद तपस्या की है, दादियों ने तपस्या की है, इस स्थान पर आते ही अपने आप बाबा की याद आने लगती है। ये गीत है ना, कण कण से तुम्हारी याद आती है। तो मैं समझता हूँ ये बाबा का स्थान एक एक यादगार स्थान बाबा की याद दिलाता है। ये शांति स्तंभ जहाँ पर हम सब तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपन्नता और संपूर्णता को इस स्थान से प्रत्यक्ष किया। हिस्ट्री हाल में जाते हैं तो बाबा के कितने अच्छे यादगार चित्र, बाबा के अंग संग रहने वालों की फोटोज देख करके क्या क्या बाबा ने किया है वो सब याद आ जाता है। बाबा के समय में तो केवल यही हिस्ट्री हाल बन के तैयार हुआ था। 71 में ये इंद्रप्रस्थ जो सामने बिल्डिंग है ये बन रही थी। जब मैं आया मधुबन में उस समय ये इंद्रप्रस्थ तैयार हो रहा था। बहुत छोटा सा स्थान और इस स्थान पर दादियों ने बाबा ने कैसे योग भट्टियां कराई। पहली भट्टी हमने 1972 में इंद्रप्रस्थ का जो ऊपर का कमरा है, मधुबन के 12-12, 15-15 भाई बहनें एकांत में बैठ करके दीदी दादी योग कराने आती थी। और एक बार बाबा भी आए हम सबसे मिलने के लिए। ये इंद्रप्रस्थ सामने जो बिल्डिंग है ऊपर के कमरे में, वहां पर भट्टी चली थी। पहली भट्टी मौन भट्टी, क्लासेज नहीं होते थे। वो यादगार भट्टी अभी तक भी जो पुराने हैं उनको याद है, कैसे 3 दिन के लिए एकदम सब अंतर्मुक्ता की गुफा में चले गए। और उस समय भोजन पर भी बहुत ध्यान रखते थे। बहुत सफेद सफेद भोजन बनता था, बिना हल्दी वाला हल्का भोजन खाओ और तपस्या करो। तो वो यादगार दिन कितने प्यारे, जब इतना छोटा सा परिवार तपस्या करते थे तो ऐसे लगता था जैसे पूरे ग्लोब को लाइट और माइट दे रहे हैं। बाबा भी उस बातों को और स्पष्ट करता है। पहले इतना योग की भी परिभाषा पता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में योग की बहुत गहन परिभाषा सुनाई है। आपको याद होगा 2 साल पहले 2015 में एक होमवर्क सबके पास भेजा था, जिसमें 12 मास के लिए ही हर मास का अलग होमवर्क तपस्या के लिए था। तपस्या वर्ष के रूप में योग की क्या गहराइयां हैं, अव्यक्त स्थिति क्या है, बीज रूप की स्थिति क्या है, साकारी याद क्या है, साकारी आकारी निराकारी उसकी गहराई क्या है, बहुत सारे डिटेल में पॉइंट्स मधुबन से सब जगह गई थी। बाबा ने बहुत अव्यक्त रूप में योग की गहराइयों पर ध्यान खिंचवाया है और हम सबका मूल सब्जेक्ट भी योग ही है। आज भी साकार बाबा की मुरली में योग बल से आत्मा शुद्ध बनेगी, वायुमंडल शांत हो जाता है। आप सब यहाँ शांति स्तंभ पर योग करते हैं शाम के समय। इस योग में केवल हमारी कमाई नहीं है, लेकिन ऐसे अनुभव होता है जैसे इतनी सब पवित्र आत्माओं के शांति के प्रकंपन पूरे ग्लोब पर जा रहे हैं। अनुभव होता है, कई बार ऐसे सन्नाटा हो जाता है। आज भी मैं जब योग कर रहा था मैंने अनुभव किया कि कुछ समय के लिए ऐसे सब के सब जैसे स्वीट साइलेंस में खो गए। कोई संकल्पों की हलचल नहीं, शरीर की भी हलचल नहीं, इतनी एकाग्रता स्थिरता स्पष्टता जैसे दिखाई देती है। एकाग्रता से स्थिरता जाती है, जब एकाग्र करते हैं किसी चीज में मन को तो धीरे धीरे एकदम स्थिर हो जाते हैं, हिलना डुलना सब बंद हो जाता है। और जब स्थिर हो जाते हैं तो मन और बुद्धि में स्वच्छता आ जाती, शुद्धता आती जाती है। और उस शुद्धता के बाद बहुत स्पष्टता आती है। अभी जरूरत है स्पष्टता की, मैं जो हूं जैसा हूं और बाबा जो है जैसा है, हम खुद को भी स्पष्ट देख सकें। क्योंकि कई बार अपने आप को हम देख नहीं पाते, समझते हैं बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है, लेकिन जब समय कुछ आता है, जब ऐसी घटनाएं आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो अंदर की स्थिति का पता चलता है कि अंदर कितनी तपस्या से परिवर्तन आया है। वैसे वायुमंडल अच्छा है, सब प्रकार का सहयोग है, प्रकृति का सहयोग है, परिवार का सहयोग है, कोई विघ्न नहीं है, तो लगता है हमारे जैसा कोई नहीं, बहुत अच्छे हैं हम सब। लेकिन जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, चाहे शारीरिक रूप से आती हैं, आर्थिक रूप से आती हैं, पारिवारिक परिवार की तरफ से आती हैं, समाज की तरफ से आती हैं, और इस समय तो प्रकृति की तरफ से भी शुरू हो गई हैं, प्रकृति से भी आती है। ये पांच तत्वों की प्रकृति से भी आती है, शरीर से भी, और साथ साथ ये वायुमंडल में जो पांच तत्व प्रकृति के, उनकी तरफ से भी बहुत परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। तो हर एक अपने आप को स्पष्ट जान सकता है कि मैं आने वाले हर पेपर को सहज पार कर लूंगा, इतना मेरे पास योग का बल, दुआओं का बल, पुण्य का बल जमा है, जो कैसी भी बात आएगी उसको हम सहज पार कर लेंगे। क्या समझते हो जाएंगे? स्पष्ट अपने आप को देख सकते हैं कि मैं जो हूं जैसा हूं। जितने समय से भी हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, शुरू से अभी तक के अपने चार्ट को, तीन चीजों की चेकिंग बाबा हम सबको सिखाता है। एक, अपना चार्ट चेक करो, योग की स्थिति का चार्ट क्या है, कितना समय मन और बुद्धि स्थिर एकाग्र होती है, बाबा के प्यार में कितना समय समाते हैं, जैसा बाबा चाहता है योग की स्थिति वैसी बनी है, कितना समय रहती है। कुछ समय में हलचल में आ जाते या धीरे धीरे अभ्यास करते करते जितना समय चाहे। बाबा तो ये कहता है कि जितना समय जिस स्थिति में रहना चाहो, सूक्ष्म तन की स्थिति में, मूल तन की स्थिति में जितना समय रहना चाहो उतना समय मन को वहां स्थिर कर सकते हो, एकाग्र हो सकता है। या एक मिनट दो मिनट के लिए अनुभव हुआ फिर नीचे आ गए, फिर इधर उधर हलचल में आ गए। तो योग का चार्ट कितना आगे बढ़ा है। दो घंटे चार घंटे छह घंटे वाले योगी हैं, या बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे अभी निरंतर योगी, सहज योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी बन जाएं। जो भी हम कुछ करें उसमें भी बाबा की याद समाई हुई हो, जो आज के वरदान में था, साधारणता से मर गए, मर जीवा, विशेष ही दिखाई दे, विशेषता ही दिखाई दे। तो हम सब साधारणता से अगर मरे हैं तो अलौकिकता का अपने आप अनुभव होगा। योगी आत्माएं साधारणता में नहीं आती, उनके बोल चाल भी साधारण नहीं होंगे, उनकी दृष्टि वृत्ति भी साधारण नहीं होगी, उनके कर्म भी साधारण नहीं होंगे। अभी हम सबको बाबा कहता है तुम अल्लाह लोग हो, अलौकिक हो। और अलौकिकता उसको ही कहा जाता है जिसमें जरा भी साधारणता न हो। लोगों की तरह हंसना, बोलना, बात करना, खाना, चलना, पहनना, सब कुछ परिवर्तन हो गया। उस लौकिक साधारण जीवन से हम सब मर जीवा बन गए, मर गए उस जीवन से। तो हरेक चेक करे, जितना योग अच्छा होता जाएगा, योग का चार्ट बढ़ता जाएगा, उतना साधारणता समाप्त होती जाएगी, अलौकिकता आती जाएगी। अलौकिकता को दूसरे शब्दों में कहते हैं रूहानियत आती जाएगी। दो शब्द बाबा के आते हैं मुरली के अंदर। एक तरफ बाबा कहता है रूहानियत बढ़ती जाएगी, और दूसरी तरफ कहता है ये जो रोब है इसका अंश समाप्त होता जाएगा। क्रोध का भी बहुत सूक्ष्म रूप है रोब, अहंकार का भी बहुत सूक्ष्म रूप है रोब, चलने में बोलने में बड़ा रोबदार, बड़ा पता नहीं किस नशे में रहता है, उसमें देह मान झलकता है रोब में। और रूहानियत जहां होती वहां नम्रता, मधुरता, सरलता, कई गुण उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक रूहानियत के साथ आते जाते हैं। तो हम सब चेक करें, योग का चार्ट हमारा अगर अच्छे से अच्छा बनता जा रहा है तो रूहानियत आती जाएगी, आत्मा को देखने का एक नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, देह विमान से अपने आप उपराम अनुभव होगा, जैसे देह अलग है मैं अलग हूं। कोई भी बोल चाल में भी साधारणता नहीं रहेगी, दैहिक दृष्टि वृत्ति में अपने आप परिवर्तन अनुभव होगा कि बदल गए, दिखाई देता है कितनी सोल कॉन्शियस स्टेज है, पवित्रता की स्टेज अपने आप बढ़ती जाएगी। याद का चार्ट अगर अच्छा बनता गया तो आत्मा शुद्ध होती जाएगी और इम्प्यूरिटी, अपवित्रता मन से, वचन से, कर्म से समाप्त होती जाएगी। तो सभी ये बात चेक करना कि याद का चार्ट मेरा कैसा है, कितना समय है, साधारणता कितना रहती है और अलौकिकता कितनी आई है, रूहानियत कितनी आई है। कभी भी बोल चाल भाषा में अहंकार का रूप रोब के स्पष्ट तो नहीं होता, दिखाई देता, बड़ा रोब से चलता है, बात कैसे करता है, पता नहीं किस चीज का इसको नशा है। कोई कोई कैसा होता है, कोई डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है तो उसका भी उसको नशा होता है, रोब दिखाई देता है, बात ऐसे करे जैसे मैं ही मालिक हूं। एक निमित्त भाव आ जाए, निर्माणचित स्थिति बन जाए, सेवाएं कितनी भी करे, कितनी भी अच्छी पोस्ट मिल जाए, अच्छी पोजीशन मिल जाए, बड़ी जवाबदारी यज्ञ सेवा की मिल जाए, लेकिन उसके चलन में, बोल चाल में वो रोग दिखाई न दे, सरलता आती जाए, नम्रता आती जाए, मधुरता आती जाए, योगी के लक्षण है। प्रैक्टिकल कर्म में वो दिव्य गुण झलकते हैं। तो हम सबको अपने योग के चार्ट पर बहुत ध्यान देना है, योग करने वाले हैं हम या योगी जीवन है। करने वाले तो दो चार घंटे वाले होंगे, लेकिन जिनकी जीवन है तो जीवन तो सदाकाल होती है, एक दो घंटे वाली नहीं होती। अमृत वेले से उठते ही रात सोते तक निद्रा भी योग की हो जाए, स्वप्न भी योग के ही, बाबा की याद के, उसके प्यार के, उसके मन के चले, ऐसे लगे जैसे बाबा बच्चों से मिल रहा है और हम बाबा से समीप में बैठे उनकी उस मुलाकात का आनंद ले रहे हैं। कई बार ऐसे अनुभव होता है जिस बात का अधिक समय चिंतन चलता है, अधिक समय हम उसके समीप रहते हैं, तो वही एक नेचर में जैसे स्वभाव में आ जाता है, वही स्वप्न बन जाते हैं। जैसे मैं कई बार सुनाता हूँ कि मैंने बहुत समय तक जब बाबा आए साथ साथ बैठे लिखा, लिखते थे बाबा के सामने हाथ से लिखते थे, फिर उसके बाद टेप शुरू किया, रिकॉर्डिंग भी करते थे। टेप तो बहुत दिन के बाद मिली, पहले टेप मशीन नहीं थी, ऐसे ही साथ साथ लिखते थे। बाबा शाम को 6-7 बजे आते थे, सुबह 7 बजे तक कभी कभी 12-13 घंटा रहते थे। तो बाबा जितनी देर बोलते जाते थे मैं सारा लिखता जाता, डायरियां भरता जाता था। क्या करता था, जिसको व्यक्तिगत वरदान दिए उसको सुबह सुबह टाइप करके दे देते थे, और अगर जनरल मुरली की पार्टी से बाबा ने कुछ बोला तो उसकी मुरली बना देते। अव्यक्त मुरली के नीचे जो आता है पार्टियों की मुलाकात, तो उस समय हाथ से लिख करके मुरली बनती थी। तो मैंने देखा एक नेचुरल आदत जैसी बन गई, नेचुरल संस्कार वो बन गया। स्वप्न में भी कई बार ऐसे आता है बाबा मुरली चला रहा है, मैं लिख रहा हूं, और कई अच्छी अच्छी बातें आती हैं, बाद में याद भी रहती है। कई बार मैं उठता हूँ याद आ गई तो मैं लिख लेता हूँ डायरी में, आज इनको बाबा ने ये बात नहीं बता दी, बड़ा मजा आता उसमें, आदत बन गई वो। योग क्या है, योग सिर्फ ऐसे लगाना, योग बाबा बाबा कहना, एक नेचुरल बाबा के साथ उठना बैठना खाना जैसे साकार में हम अनुभव करते हैं, ऐसे बाबा की हर एक्टिविटी याद आ जाती है। दादियों के साथ रहे वो याद रहती है, तो एक नेचुरल योगी जीवन बन जाए। और जितनी स्पष्टता आती जाएगी, स्वच्छता के बाद स्पष्टता आएगी, ऐसे नहीं आएगी, आत्मा अपने आप को देख सके मेरे अंदर अभी तक क्या है, कौन से ऐसे संस्कार हैं, कौन सी कमियां हैं, किन विशेषताओं से संपन्न बनते जा रहे हैं हम, तो उसके आधार से हम अपने आप को अनुभव कर सकते हैं कि कितनी स्वच्छता है। क्योंकि स्वच्छता के बाद स्पष्टता आती है। जैसे देखेंगे आप कि किसी किसी मंदिर के आगे पानी के बड़े बड़े ऐसे कुंड बना देते हैं और वहां पानी इकट्ठा करते हैं, पहले एकाग्र होता है, इकट्ठा होने के बाद वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, और स्थिर जब हो जाता है तो उसे जो मिट्टी धूल कण बह करके आते हैं वो धीरे धीरे जमीन में स्थिर बैठ जाते हैं, और जब वो पानी स्थिर होकर के बिल्कुल शीतल हो जाता है तो उसमें देखेंगे स्वच्छता दिखाई दे, स्पष्टता आती है। अगर कोई पैसा डाल दो उसके अंदर तो 10 फुट 20 फुट 50 फुट भी गहरा पानी हो तो उसके अंदर बहुत बड़े रूप में दिखाई देता है, इतनी स्पष्टता आ जाती है। तो ऐसे ही जितनी आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी ना, उतना अपने को, बाबा को, चिन भाई बहनों को मिलेगी, वो स्पष्ट अनुभव कर सकेगी ये क्या है और मैं क्या हूं। बाबा ये चाहता है कि जो हूं जैसा हूं मैं अपने आप को महसूस कर सकूं, नहीं तो कई प्रकार के आवरण चढ़ते जा रहे हैं, संघ दोष में जहाँ हम जिनके साथ रहते हैं, जिस प्रकार की लेन देन करते हैं, जिस प्रकार की हमारी चर्चाएं चलती हैं, उसी आधार से हमारे संस्कार जमते जाते बनते जाते हैं। और वैसे पता नहीं चलता कि मेरे अंदर ऐसे कोई गलत संस्कार बन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अच्छी अच्छी परत के नीचे वो संस्कार छिपे रह जाते हैं। एक के ऊपर ऊपर अच्छी लेयर चढ़ रही है, अच्छी अच्छी लेयर चढ़ रही है। अच्छा खाना मिला, अच्छा भोजन मिला, अच्छा संग मिला, अच्छी पढ़ाई मिली, अच्छे वातावरण में है, तो जैसे वो संस्कार पर लेयर चढ़ गई, ऊपर से दबता गया वो संस्कार और लगता है मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन वो जो सूक्ष्म विकारी बीज है, जो संस्कारों पर कड़ी नजर नहीं है, उन संस्कारों को अगर हमने योग अग्नि में जलाया नहीं है, तो जब ऐसा कोई वातावरण आता है, ऐसा माहौल बनता है, ऐसा संग मिलता है, ऐसी कोई बात घट जाती है, तो वो संस्कार बाहर आ जाता है। कहते चाहते नहीं थे, पता नहीं कहां से आ गया, कहां से आ गया, वो छपा हुआ था, अंदर छिपा हुआ था। तो इसलिए उस पर बहुत कड़ी नजर चाहिए, उसके लिए हमें बहुत अच्छी तपस्या की जरूरत है। साधारण याद से वो संस्कारों का संस्कार नहीं होता, समाप्त नहीं होते, चलते रहते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना कि कोई भी ऐसे संस्कार है ना, उनको हमें बहुत अच्छी एकाग्रता से, तपस्या से समाप्त करना है, जला देना है, फिर से इमर्ज ना हो। होगा 5000 साल के बाद, उसकी बात नहीं याद करना, लेकिन इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, कोई भी शूद्रपने की, साधारणता की एक्टिविटी फिर से रिपीट ना हो, ऐसा योग बल कमाना है, जमा करना है। तो तीन बातों में, पहले योग का चार्ट अच्छे से अच्छा हमारा होता जाए, और दूसरा बाबा कहता है पोतामेल, बहुत ईमानदारी से पोतामेल में कमाई कितनी है, खर्चे कितने हैं। कईयों के खर्चे बहुत हैं, कमाई कम है, कोई कमाते बहुत हैं, खर्चा नहीं करते, कंजूस हैं। इसके लिए बाबा कहता है इसका भी पोतामेल रखो। अगर कमाई कम है और खर्चे बहुत है, मान लो हमारी एकाग्रता कम है, अंतर्मुखता कम है, अच्छा अभ्यास हमने साइलेंस का नहीं किया और बोलते बहुत हैं, तो क्या होगा, एनर्जी खत्म होती जाएगी। बोल की एनर्जी अधिक यूज की, शांति की शक्ति जमा नहीं है, तो जितना जमा है उतना खर्च है, तो बैलेंस से जीवन चलेगी। अगर जमा है ही नहीं और खर्चा करते जा रहे हैं, तो कब तक खर्चा करेंगे। इसलिए इस बात को बहुत अंडरलाइन करना, कमाई कितनी है और खर्चे कितने हैं। मम्मा का एक शब्द मैं आपको सुनाता हूँ, मम्मा का मास अभी कल से शुरू हो रहा है, जून मास मम्मा का मास हम मनाते हैं, और इस मम्मा के मास में मम्मा की बहुत सारी शिक्षाएं याद आती हैं। मम्मा की एक बहुत मीठी शिक्षा थी कि बच्चे कमाई के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, अमृत वेले उठते हो, बाबा के कमरे में तपस्या करते हो, मुरली सुनते हो, मनन चिंतन करते हो, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, भूख के ब्रह्मा भोजन को भी बड़े प्यार से शुद्धता से खाते हो, संग की भी परहेज करते हो, सब कुछ करते हो, कमाई के बहुत सारे सोर्स हैं और वो कमाई कर रहे हो, लेकिन गंवाते कितनी जल्दी हो। एक सेकंड में मूड खराब हुआ, गुस्सा आया, तो जितनी कमाई की उतना एक मिनट में गंवा दिया। किया 6 मास, साल भर अच्छी कमाई की, भरपूर होते गए, लेकिन एक मिनट का गुस्सा आया, सारी कमाई पर पानी फिर गया। आवेश, आवेग, वेग भी है ना, विकारों का वेग, पता नहीं चलता मैं क्या करने जा रहा हूं, अनकंट्रोल हो जाती आत्मा, बैलेंस समाप्त हो जाता, आवेग आया, गलत काम हो गया, फिर पश्चाताप भले होता रहे, सोचते रहेंगे ऐसा कैसे हो गया, नहीं करना चाहिए, तो पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं परवश हो गया, कोई ने मेरे पर कुछ कर दिया, मुझे पता नहीं चला, ऐसे ऐसी बातें करेंगे। लेकिन करता कोई किसी को नहीं है कुछ, वो हमारा आवेग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए योग के माध्यम से हम अपने आप को बहुत शीतल योगी बनाएं। शीतल, कर्मेंद्रियां शीतल होती जाए। मैं तीन निशानी योगी की सुनाता हूँ, हमेशा कहता हूँ। एक तो योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल होते जाए, उत्तेजना खत्म हो जाए, आवेश खत्म हो जाए, आवेग खत्म हो जाए, शीतल काया वाला योगी। अंग अंग सुगंधित है, अंग अंग शीतल है, कभी भी जोश नहीं आएगा, कभी कुवचन नहीं निकलेगा, कभी चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा, बहुत सरल शीतल। तो शीतलता एक पहला लक्षण योगी का दिखाई देता है, और दूसरा उसके जीवन के अंदर सरलता आती जाती है। सरलता भोलापन नहीं, भोलापन नुकसान करेगा, भोले नहीं बनना। नहीं तो बाबा कहता भोले बनोगे तो माया का गोला लगेगा। भोलापन ठीक नहीं होता, लेकिन सरल नेचर, मिलनसार नेचर, अपने आप को मोल्ड करने की नेचर, जो जितना सरल होता है सबके साथ मिक्स हो सकता है, मिल करके चल सकता है। हमारी दादियों ने अपनी नेचर को ऐसा बनाया है। जानकी दादी की नेचर देखो, हमने शांतामय दादी की नेचर देखी है, गुलजार दादी की नेचर देखते हैं, इतनी सरल चित, जैसे बिठाओ, जो खिलाओ, जो बोलो, जो बात करो, जहां बिठा दो, इतनी सरल नेचर, मोल्ड कर लेते अपने आप को। ये नहीं ऐसा ही कहां बिठा दिया, कहां ले आए, कुछ नहीं संकल्प। अभी चलो एज के हिसाब से है, लेकिन शुरू से ही हम लोगों ने देखा है बहुत सरलता के साथ सबके को मिला के, सबके साथ मिल के, हाँ जी करके, अपने आप को मोल्ड करके चले हैं, तब संगठन एकमत रहा है। सरलता जीवन में उनके आती गई। और तीसरी संतुष्टता इतनी है जो बस बाबा आपने सब कुछ दे दिया, भरपूरता है। संतुष्ट ऐसे नहीं है कि है नहीं फिर कहें हाँ हाँ हम संतुष्ट हैं। संपन्नता भरपूरता के आधार से संतुष्टता का अनुभव है। और ऐसी संतुष्ट आत्माएं जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं, पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं, तो स्वयं से हैं, फिर परिवार भी उनसे सदा संतुष्ट है, इतना बड़ा परिवार बाबा ने दिया वो भी संतुष्ट है, उनकी हर एक्टिविटी से संतुष्टता का अनुभव होता है। और बाबा तो सदा संतुष्ट ही, बाबा को संतुष्ट किया तो परिवार अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। बाबा बीज है कहता, बीज को अपना बना लिया तो परिवार कहाँ जाएगा। तो अगर हमने बाबा को संतुष्ट कर लिया, बाबा बहुत सरल संतुष्ट होता, सहज संतुष्ट होता है, कैसे भोलानाथ है ना, बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई बाबा को बहुत प्रिय है। अगर हम सच्चे हैं, जो हैं जैसे हैं, बाबा के आगे स्पष्ट हैं, सही सच्ची सच्चा अपना पोता मेल बाबा को देते हैं, तो दिल पर रहते हैं, वो राजी रहता बाबा उनसे। बच्चा कुछ छिपाता नहीं है, कुछ हेरा फेरी नहीं करता। तो पोता मेल के अंदर जितनी सच्चाई आती जाती है, जितने खर्चे कम है, कमाई अच्छी है, उतना माँ बाप खुश होते हैं। तो चेक करना हमारा पोता मेल क्या है, खर्चे और कमाई का हमारा अधिकार क्या है। तो इस पोता मेल को चेक करेंगे तो अपनी कमाई पर ध्यान जाएगा। कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है तो दिवाला निकल सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना कि कमाई भी अच्छी हो, और बीच बीच में हम अपने आप को चेक करें, अपने स्टॉक को चेक करो। कई बार कहते हैं हमारे पास सब प्रकार का स्टॉक है, हमने खूब जमा कर लिया अपने पास। ज्ञान का भी स्टॉक है, गुणों का भी स्टॉक है, अच्छे चरित्र का भी स्टॉक है, सब प्रकार का स्टॉक है, लेकिन बीच बीच में देखते नहीं ना, तो जैसे स्टॉक घर में भरा हुआ हो, अनाज का गोदाम भरा हुआ हो, सब चीजें हो, चेकिंग न की जाए और धीरे धीरे उसमें कोई कीड़ा लग जाए तो स्टॉक होते हुए भी काम नहीं आएगा, समय पर खाली खाली लगेगा। तो देखना स्टॉक है या कोई कीड़ा तो नहीं उसके अंदर लग जाता है। पता कौन सा कीड़ा लगता है ब्राह्मणों के स्टॉक में, कौन सा कीड़ा लगता है, मैं मेरे पास मैंपन जो आता है ना, वो मैंपन का कीड़ा बहुत खतरनाक है। कई करते थोड़ा है, वर्णन बहुत करते, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना बिजी रहता हूँ, लेकिन अगर वो मैंपन का कीड़ा अंदर अंदर लगता गया तो घुन का काम करता है, सारे स्टॉक को खत्म कर देता है। कितनी बड़ी अच्छी पूंजी जमा की सेवा करके, दुआएं लेकर के, लेकिन मैं नहीं खत्म किया वो कीड़ा अंदर अंदर खजाने को खाली कर देता है। तो पूता मेल को जरूर चेक करना। और तीसरा है हमारी चलन, हमारे व्यवहार, बोल चाल का रिकॉर्ड कैसा है। रिकॉर्ड पर भी बहुत ध्यान होता है। स्कूल में अच्छे मार्क्स ले लो, लेकिन अगर लास्ट में रिमार्क के अंदर उसने रिकॉर्ड पर कट कर दिया कि रिकॉर्ड ठीक नहीं है, चंचल है, चोर है, छिपाता है, लड़ाई करता है, रिकॉर्ड इसी में आता है, गुस्से वाला है, तो उसके रिकॉर्ड को कट कर देते, ठीक नहीं रिकॉर्ड है, फिर उसको कहीं एडमिशन नहीं मिलती। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता, बच्चे रिकॉर्ड पर बहुत ध्यान देना। रिकॉर्ड कई बातों का होता है, एक्यूरेसी का भी रिकॉर्ड है, चरित्र का भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देने का भी रिकॉर्ड है। कितना हम सबको रिकॉर्ड दे करके चलते हैं। कई आत्माएं है ना, चलते हैं, संगठन में रहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड देना नहीं आता। और रिकॉर्ड देना नहीं आता है तो उनका रिकॉर्ड खराब हो जाता। चाहेंगे, हर एक की इच्छा क्या होती है अंदर से, सब मेरे से बहुत प्यार से बात करें, सब मुझे रिकॉर्ड दें, यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड नहीं मिलता, यहाँ मेरी इज्जत नहीं होती, यहाँ कोई मुझे पूछता नहीं है। लेकिन दूसरों से अपेक्षाएं हैं, खुद देना आता है? अगर खुद देना आता होगा तो सब देंगे। इसलिए बाबा कहता है कई चीजें ऐसी होती हैं जो मांगी नहीं जाती, दो तो रिटर्न मिल जाएगा। तो बाबा ने अपने बच्चों को क्या बनाया है, मास्टर दाता बनाया है। यही हमारे इस विद्यालय की एक विशेषता शुरू से रही है। बाबा ने शुरू से पाठ पक्का कराया, मांगने से मरना भला, मांगो नहीं, देना सीखो। और दाता बन करके जितना देंगे उतना अपने पास भरपूर रहेगा। धन दिए धन ना खुटे, अखुट है, भंडारा भरता जाएगा। स्थूल धन तो कभी हो सकता है कम भी पड़ जाए, लेकिन अगर बाबा के कार्य में वो भी लगता है तो वो भी बढ़ता जाता है, वो भी कमी नहीं पड़ती। कहाँ से आता है पता नहीं चलता। कई बाबा के गुप्त बच्चे हैं, खूब बाबा के प्यार से यज्ञ की सेवा करते हैं, भेजते हैं, ये चीज चाहिए ले लो, ये चीज भेज देते, पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन बाबा उनको कभी खाली नहीं होने देता। कहाँ से आ जाता है पता नहीं चलता। तो स्थूल में भी संगम पर ये विशेषता दिखाई देती है कि अगर कोई सच्चाई से बाबा के प्यार से यज्ञ में कोई सफल करता है तो उसका खजाना भरपूर रहता है, आंतरिक खुशी होती है, दुआएं मिलती हैं, तो उसे आत्मा भरपूरता का अनुभव करती है। लेकिन सूक्ष्म में भी वो खजाने सब ऐसे लगते हैं, सब हैं हमारे पास। जितना हम दूसरों को ज्ञान धन देते हैं उतना ज्ञान का खजाना जमा होता जाता, नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती हैं। अगर आप किसी को कोर्स नहीं कराओ, किसी को ज्ञान नहीं सुनाओ, तो धीरे धीरे सुनते जाओ सुनते जाओ, स्टॉक नहीं रहेगा, खाली खाली अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने एक विधि बनाई है, जो सुनते हो दूसरों को सुनाओ, दान करो। अभी भी देखो दादी जानकी बैठेगी कि आज कोई आया नहीं ना, मैं किसको ज्ञान सुनाऊं, पहले ज्ञान सुनाओ ना फिर नाश्ता करूंगी। सुबह सुबह इंतजार करती है कोई आए पहले, मैं उसको कुछ सुनाऊं फिर नाश्ता करूं। कितना ध्यान है इतनी उम्र में भी कि मैंने अभी दान नहीं किया। कभी कभी कहेगी मैंने अभी दान नहीं किया इसलिए नाश्ता नहीं करूंगी। तो हम सबको भी ध्यान रखना है, बाबा ने हमको इतना ज्ञान धन दिया है, ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, ये धन दूसरों को देने से बढ़ता है, देना जरूरी है। तो मास्टर दाता बन करके रहना है, मंगता नहीं, मंगता तो हमेशा झुकता रहे, और दाता जो होता अपने सामान में रहता। इसलिए बाबा कहता लेना एक से, बाबा से लो और सबको दो, लेना एक से है, देना सबको है, बाकी किसी से आपस में लेने की इच्छा नहीं रखनी, ये क्या मुझे देगा, उससे क्या मिलेगा, देगा तो उसका अधिकार रखेगा। इसलिए अगर कोई देता है और अधिकार रखता है तो उस चीज को लेंगे क्या? बाबा कहता उसको स्वीकार ही नहीं करो। बाबा से सब कुछ ले रहे हैं और गुप्त बाबा अपने आप बच्चों को खूब भरपूर कर रहा है। और अभी तो संगम पर ऐसा समय आ गया है कि आप संकल्प करो, अगर पवित्र संकल्प, शुद्ध संकल्प है, वो अपने आप पूरे हो रहे हैं। कई बार कहते संकल्प रचने की भी जरूरत नहीं है, जो आवश्यकताएं हैं बाबा अपने आप पूरी करता है। लेकिन अगर हद की इच्छाएं हैं तो इच्छाएं वो समस्या पैदा कर रही हैं। जितने विघ्न आते हैं ना कहीं पर भी, उनका एक मूल कारण है इच्छाएं बढ़ती जा रही है। एक पूरी होगी दो आ जाएंगे, एक सेंटर बन जाएगा, एक मकान बन जाएगा, दो और चाहिए कम पड़ गया। स्थूल में भी कई प्रकार की इच्छाएं व्यक्ति की बढ़ती जाती और इच्छाओं के कारण फिर मांगना शुरू हो जाता, और जब मांगना शुरू होता तो समस्या शुरू हो जाती। इसलिए बहुत अंडरलाइन करना है, बाबा मुझे कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाएं तो मृत तृष्णा के समान है। संगम युक्त पर अपने आप को इतना भरपूर करो अविनाशी ज्ञान धन से, गुणों से, शक्तियों से, जो आवश्यकताएं होंगी बाबा पूरी कर देगा। इच्छाएं नहीं रखनी है, इच्छाओं के पीछे भागना नहीं है, अपने आप पूरी होनी होंगी तो पूरी हो जाएंगी। क्या चाहिए, बाबा दो रोटी खिलाएगा, कपड़ा पहना देगा। और यहां तक भी कहता ना, अगर बहुत प्यार से बाबा को भोग लगाया है ना, तो जब सारी दुनिया भूख के लिए तड़पेगी उस समय बाबा खिलाएगा। जब खाने योग्य अनाज नहीं रहेगा, होगा सब, भंडारे सब होंगे, हवा प्रदूषित हो गई, मान लो ऐसा कोई केमिकल अटैक हो गया कहीं, तो हवा खराब हो जाएगी, सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से अच्छी मिलेगी। या ऐसा कुछ जहरीला शस्त्र छोड़ दिया तो अनाज होते हुए भी विषैला हो गया, खा नहीं पाएंगे। तो अनाज खाने योग्य नहीं रहे, पानी पीने योग्य नहीं रहे, हवा लेने योग्य नहीं रहे, ये सब तो होगा ना कलयुग अंत में, नहीं होगा। तो ये सब अंत की सीन सामने आ रही है, दिखाई दे रहा है कि प्रदूषण इतनी फास्ट गति से बढ़ रहा है। आज के अखबार में था 2020 तक 75% मौत जो होगी ना, वो इस पर्यावरण के दूषण के कारण होगी, दूषित पर्यावरण के कारण होगी। हवा शुद्ध नहीं मिलेगी, पानी शुद्ध नहीं मिलेगा, खाना शुद्ध नहीं मिलेगा, फल शुद्ध नहीं मिलेंगे, जो खाओगे उसमें विष जहर है। तो इसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी और 70-75% मौत जो होगी इस अनाज से, इस खाने पीने से होगी। तो जब ऐसा सब हो जाएगा, क्या बाबा के बच्चे जिन्होंने बाबा को प्यार से भोग खिलाया है वो भूखे रहेंगे, कहां से खाएंगे, बोलो कहां से खाएंगे। बाबा वतन में बुलाएगा और अपना बच्चों को सुबह रस पिलाएगा। ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा ना सूक्ष्म वतन में जाने का, इस व्यक्त भाव व्यक्त भान से न्यारे रहने का अभ्यास, जो बाबा बुलाए आओ बच्चे मेरे वतन में आ जाओ, अपने आप बाबा खिलाएगा, भरपूर कर देगा, भूख लगेगी नहीं। तो इसलिए इस समय ये तैयारी करनी है कि अगर सब कुछ ऐसा हो जाए तो हम बाबा को बहुत प्यार से अगर खिला रहे हैं, भोग जो खाते हैं, भोजन खाते हैं, पहले बाबा को आह्वान करते, बाबा आप खिलाने वाले, पहले इसको स्वीकार करो, भले बाबा खाए या न खाए, लेकिन ऑफर करना फर्ज है, बाबा की दृष्टि पड़ेगी ना, शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए बहुत योग युक्त होकर के भोजन बनाना और खाना है और खिलाना है, तो उससे वो शक्ति आएगी और बाबा देखेगा बच्चे योग में रह करके खाते हैं। नहीं तो बाबा कहता जब भूल जाते हो ना तो माया खा जाती है, और माया जब खा जाती है तो पहलवान बन जाती है, फिर लड़ती है तुमसे। तो ध्यान रखना, माया को पहलवान नहीं बनाना, हम मजबूत बने, हम शक्तिशाली बनते जाएं, उसका आधार है बहुत योग युक्त होकर के भोजन खाओ, शांति से बाबा के प्यार में याद में बैठ करके, जो आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न बनती जाए। तो रिकॉर्ड अच्छा तभी रहेगा जब इन सब बातों पर हमारा ध्यान है, हमारा चरित्र पर ध्यान है, बोल चाल पर ध्यान है, खाने पीने पर ध्यान है, रिकॉर्ड का रिकॉर्ड अच्छा है। रिकॉर्ड सबको देते हैं, सबको सम्मान देते हैं। पहले कहावत थी छोटों को प्यार दो, बड़ों को रिकॉर्ड दो, और अभी क्या कहते हैं, बड़ों को नहीं छोटों को भी रिकॉर्ड चाहिए। उनको भी अगर सम्मान नहीं मिलता है तो नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। तो इसलिए हम सबको बाबा ने देना सिखाया है, देते चलो, सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख लेंगे। इसलिए बाबा ने जो टोटके सुनाए हैं छोटे छोटे बहुत अच्छे हैं, और समय पर याद आने चाहिए। समय बीत जाने के बाद याद आए बाबा कहता है कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाए और शस्त्र साथ हो लेकिन उसको पता न हो इस शस्त्र को कैसे छोड़ा जाए, कब छोड़ा जाए, भूल जाए कि मेरे पास ऐसा शस्त्र है जो हम इस दुश्मन को हरा सकते हैं, होते हुए भी याद ना आए तो हार हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता बच्चों के पास शस्त्र तो सब प्रकार के हैं, इतना शस्त्र बाबा ने दिए हैं, हर बात के लिए कोई भी बात माया की है, कैसी भी परिस्थिति वाली बात है उसकी विधि बाबा ने सुनाई है। और उस विधि रूपी शस्त्र को अगर साथ रखेंगे तो किसी भी परिस्थिति में हम जीत पा सकते हैं, लेकिन उस समय विधि याद नहीं आती क्या करना है। सबसे अच्छी विधि क्या बाबा ने सिखाई है, सबसे अच्छी विधि क्या है, सबसे विधि है अपने चिंतन को बहुत शुभ रखो, अशुभ नहीं सोचो। कोई भी कर्म की सफलता का आधार हमारा आंतरिक चिंतन है, अगर उसमें नेगेटिविटी आ गई, कोई काम करने जा रहे हैं होगा ही नहीं, कैसे होगा पता नहीं, कर पाएगा या नहीं करेगा, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, हमारे संकल्पों में नेगेटिविटी है, तो ये विधि ठीक नहीं है। वही नेगेटिव संकल्प सामने से विघ्न रूप बन करके आते हैं, इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर विधियां सिखाई हैं। हर बात की सिद्धि प्राप्त हो सकती है अगर विधि यथार्थ है, विधि यथार्थ है तो सिद्धि मिलेगी ही, हमें नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। तो विधि पूर्वक चलना है, संकल्प के लिए विधि है, बोल के लिए विधि है, कर्म के लिए विधि है, संबंध संपर्क के लिए विधि है, स्मृति वृत्ति दृष्टि के लिए विधियां हैं, और ये विधियों पूर्वक अगर हम चलते हैं तो सिद्धि अवश्य मिलती है। ओम शांति।
से भर लीजिए।